आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा व्यास देव का जन्मदिन है। व्यास देव का नाम तो आप सबने सुना है। श्रील व्यास देव वेदों के संपादक हैं, इसलिए उनका और एक नाम है वेद व्यास, और वो आदि गुरु हैं इस भौतिक जगत में, खास करके इस पृथ्वी लोक पर। वैसे तो आदि गुरु भगवान कृष्ण है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, परंतु इस धरातल के ऊपर श्रील व्यास देव ही आदि गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने सारे शास्त्रों का संपादन किया है, उनकी रचना की है, और साथ साथ में गुरु शिष्य परंपरा में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए जब गुरु की पूजा होती है, जिस दिन गुरु का जन्मदिन होता है, तो उस पूजा को व्यास पूजा कहते हैं। जैसे जन्माष्टमी के बाद वाले दिन प्रभुपाद जी की व्यास पूजा होती है। व्यास पूजा मतलब उनकी पूजा करते हैं यह समझकर कि वो गुरु हैं, इसलिए उस अनुष्ठान को व्यास पूजा कहते हैं, केवल गुरु पूजा नहीं। उसी तरह से इस आसन को व्यासासन कहते हैं। ये असल में हमारा आसन नहीं है, हमारी बैठने की योग्यता नहीं है, परंतु जो भी यहां बैठते हैं प्रवचन देने के लिए, श्रील व्यास देव का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठते हैं। सबसे पहले श्रील व्यास देव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुख से दो शब्द आपकी ओर से कहने के लिए आप शक्ति और अनुमति दीजिए। वास्तव में यह आपका पीठ है, आपका आसन है ये, लेकिन आपको हम देख नहीं सकते हैं। वाणी रूप में तो आप हैं उपस्थित हमारे बीच में, क्योंकि आप ही ने शास्त्रों की रचना की है, परंतु प्रत्यक्ष हमारे आंखों से हम आपको अब नहीं देख सकते। आपका आसन तो है, तो अलग अलग भक्त यहां आसन पर बैठकर वेद व्यास जी ने बताए हुए ज्ञान को दोहराते हैं, इसलिए इस स्थान को व्यासासन भी कहा जाता है। इसलिए आज का दिन जो कि गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा है, उसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि व्यास देव सारे गुरुओं के आदि हैं, मूल हैं। श्रील व्यास देव भगवान श्री कृष्ण के महाभागवत उत्तम अधिकारी शुद्ध भक्त भी हैं। जितने भी सारे अच्छे अच्छे कृष्ण भक्ति के ऊपर ग्रंथ लिखे हुए हैं पुराने जमाने में, उन सब के रचयिता श्रील व्यासदेव हैं। जैसे कि भगवत गीता है या श्रीमद् भागवत है, और भगवत गीता में भी स्वयं अर्जुन ये घोषणा करते हैं कि व्यासदेव भी कृष्ण भक्ति के लिए या कृष्ण को जानने में एक अधिकारी व्यक्ति है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में ही अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष्मे। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, आप ही पर ब्रह्म है, आप ही पर धाम है, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही सबसे शुद्ध पवित्र व्यक्ति हैं इस जगत में, आप ही परम सत्य भगवान हैं। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं हे कृष्ण, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, जितने भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए वो सब भी इसी बात को दोहराते हैं कि आप ही भगवान हैं। कौन से ऋषि? देवऋषि नारदस तथा, नारद को देवऋषि कहते हैं, देवलोक के ऋषि हैं वो, ब्रह्मांड भर में घूमते रहते हैं, खास करके ऊपरी लोकों में भी घूमते भ्रमण करते हैं। देवऋषि नारदस भी, नारद भी कहते हैं इस बात को। असित देवल, ये भी एक ऋषि थे, असित देवल ऋषि, और असित और देवल ये भी अलग अलग दो ऋषि थे। तो जो भी आप समझें, इन्होंने भी कहा है कि कृष्ण ही परम सत्य है, और व्यास है, असितो देवलो व्यास है, और व्यास देव ने भी कहा है कि आप ही परम सत्य भगवान हैं। स्वयं च एव ब्रवीषि में, और हे कृष्ण इस समय आप भी स्वयं खुद घोषणा कर रहे हैं कि आप ही परम सत्य हैं। देखिए भगवत गीता की खूबी यह है कि इस शास्त्र में स्वयं भगवान घोषणा करते हैं कि मैं भगवान हूं। कितने सारे ग्रंथ हैं जिसमें कोई कोई मसीहा वगैरह आता है और वो कहता है कि ये है भगवान या वो है भगवान, लेकिन गीता की विशेषता ये है कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं। तो स्वयं चैव ब्रवीषि में, इस तरह से अर्जुन भी ये प्रमाण देते हैं कि व्यास देव एक अधिकारी व्यक्ति हैं, कि वो भी घोषणा करते हैं कि कृष्ण परम सत्य है। अगर वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति होते तो उनको अधिकारी के रूप में प्रमाण के तौर से अर्जुन ने प्रस्तुत न किया होता, लेकिन व्यासदेव भगवान के महाभागवत भक्त हैं, इसलिए उनका उदाहरण अर्जुन ने दिया है सामने। वैसे श्रील व्यासदेव भी गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। आप तो जानते हैं कि चार वैष्णव परंपरा होते हैं, ब्रह्म परंपरा जो ब्रह्मा जी से आती है, रुद्र परंपरा जो शिव जी से आती है, श्री संप्रदाय जो कि लक्ष्मी जी से आती है, और कुमार संप्रदाय जो कि चार कुमारों से आती है। अंततः सारे संप्रदाय तो भगवान से ही शुरू होते हैं, फिर भी इस ब्रह्मांड के भीतर इन चार व्यक्तियों से ये चार वैष्णव संप्रदाय शुरू हो जाते हैं। तो श्रील व्यासदेव ब्रह्म परंपरा में आते हैं। ब्रह्मा जी ने ज्ञान उनके पुत्र नारद मुनि को दिया और व्यासदेव जी नारद मुनि के शिष्य रहे। फिर हमारी परंपरा में, हम भी इस परंपरा में आते हैं, हम सब इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। फिर आगे व्यासदेव जी के कई शिष्य हुए, उनमें से एक थे मध्वाचार्य। फिर मध्वाचार्य के परंपरा में संप्रदाय चलते आया और फिर माधवेंद्रपुरी से गौड़ीय वैष्णव परंपरा शुरू हो गई। इस तरह से श्रील व्यासदेव भी हमारे पूर्वज हैं, हमारे संप्रदाय के पूर्व आचार्य रहे हैं, इसलिए हमारे लिए खास करके व्यासदेव के बारे में सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ जो भी हम शास्त्र इत्यादि पढ़ते हैं, जैसे भागवतम है, भगवत गीता है, ये तो व्यासदेव की रचनाएं हैं, इसलिए व्यासदेव के बारे में सुनना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं है कि श्री व्यासदेव आदि गुरु हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, उन्होंने शास्त्रों की रचना की है, इतना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि श्री व्यासदेव भगवान के एक अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में जब 25 प्रमुख अवतारों का वर्णन किया जाता है तो श्री व्यासदेव का नंबर 17वां आता है। क्रम से एक के बाद एक समय के हिसाब से, काल के हिसाब से वर्णन किया जा रहा है, सूत गोस्वामी करते हैं, और इसमें व्यासदेव जी का नाम भी आता है। दूसरे स्कंध में भी इनका नाम आता है, 12वें स्कंध में भी आता है। जगह जगह श्रीमद् भागवत में ये घोषित किया जाता है कि श्री व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो आइए थोड़ा बहुत इतिहास देखते हैं, श्रीमद् भागवत का इतिहास, जिससे कि हम जान सकते हैं कि श्री व्यासदेव का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने वेदों का संपादन किस तरह से किया। बड़ा सुंदर इतिहास है, तो कृपया सब ध्यान से सुनिएगा, और जो योग निद्रा में है वो कृपया बाहरी चेतना में प्रकट होइएगा और इस सुंदर दृष्टा, इस सुंदर कहानी को ध्यान से सुनिएगा। आप तो जानते हैं कि वेद ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, किसी ऐरे गैरे व्यक्ति ने इसको लिखा नहीं है। वेदों की शुरुआत कहां से हुई, उसका उद्गम कहां होता है, किन से आता है वेद, भगवान से, बल्कि भगवान नारायण के श्वास से ही आता है। इसका मतलब है कि वेद भगवान से अभिन्न है। वेद मतलब ज्ञान, ये मूल शास्त्र है हम सबके लिए, और भगवान के सांस से अगर बाहर आता है इसका मतलब है कि ये भी शाश्वत है, भगवान का सांस भी तो शाश्वत होना चाहिए जब भगवान शाश्वत है। इस तरह से वेद भगवान के साथ रहते हैं क्योंकि भगवान में पूर्ण सत्य है और वेद ही सत्य है। और जब भगवान इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, इस भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं, उस समय इस वैदिक ज्ञान को भी वो यहाँ पर अंदर प्रदान करते हैं हर एक ब्रह्मांड के भीतर, ताकि हर एक बद्ध जीव जो कि इस माया जाल में फंसा हुआ है, जन्म मृत्यु के चक्कर में अटका हुआ है, वो ये वैदिक ज्ञान का सहारा लेकर इस भवसागर से मुक्त होकर भगवान के धाम में लौटकर चले जाए। तो भगवान ये वेद का ज्ञान किसके माध्यम से प्रदान करते हैं इस भौतिक जगत के अंदर, हर एक ब्रह्मांड के अंदर? किसके माध्यम से? ब्रह्मा जी के माध्यम से। अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और हर एक ब्रह्मांड के भीतर एक प्रमुख इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर। जैसे कोई बड़ा बांध काम चलता है उसमें कई इंजीनियर काम करते हैं, लेकिन एक चीफ इंजीनियर होता है और वो जिम्मेदार होता है सारे काम देखने के लिए। और ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के चीफ इंजीनियर हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ये वेदों का ज्ञान सृष्टि की रचना के समय दिया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि, ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा जाता है। कवि मतलब केवल जो कविता लिखता है ऐसे ही नहीं, कवि शब्द का अर्थ ये तो है अवश्य, लेकिन कवि शब्द का अर्थ ये भी होता है कि जो दार्शनिक है, जो बहुत बड़े दार्शनिक है उनको भी कवि कहते हैं। तो बड़े से बड़े दार्शनिकों के आदि हैं ब्रह्मा जी, सबसे बड़े दार्शनिक ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं। तो आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि के समय जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तो भगवान श्री विष्णु ने, नारायण ने या कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में ही उनको ये ज्ञान स्फुरित कर दिया। और इस तरह से ब्रह्मा जी को पता चला कि ये वेद क्या है, ये सृष्टि की रचना मुझे कैसे करनी है। इस तरह से ब्रह्मा जी को ये सारा ज्ञान पता चल गया। लेकिन होता ये है कि ब्रह्मा जी के हर एक दिवस के अंत में ब्रह्मा जी सो जाते हैं, जैसे हम लोग भी सोते हैं, और जब सुबह उठ जाते हैं कभी कभी ब्रह्मा जी भूल जाते हैं, अरे अब फिर से सृष्टि कैसे करना। ब्रह्मा जी की मृत्यु के समय सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, जैसे हम दो तीन रविवार पहले सुन रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी के सोते समय अर्थात उनके रात्रि के समय ब्रह्मांड का थोड़ा हिस्सा जो नीचे के लोक हैं वो पानी में आ जाते हैं, प्रलय हो जाता है। और ब्रह्मा जी जब जाग जाते हैं सुबह को, तो फिर उनको सृष्टि की रचना करनी पड़ती है, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन जितने लोकों का प्रलय हुआ है उनको तो ठीक ठाक अपने अपने स्थान में स्थित करना और जीवात्माओं को अलग अलग उपयुक्त शरीर प्रदान करना उनके उनके कर्म के अनुसार, ये सब ब्रह्मा जी को करना पड़ता है। तो कभी कभी जब ब्रह्मा जी नींद से जाग जाते हैं तो थोड़ा बहुत भूल जाते हैं कि अरे मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और कभी कभी वेद भगवान ब्रह्मा जी के निद्रा की वजह से खो जाते हैं, और या तो कोई असुर आके चोरी कर लेते हैं, उस समय भगवान को भी अवतार लेना पड़ता है। आप ऐसे कोई अवतार के बारे में बता सकते हैं जिन्होंने आके वेदों को बचा लिया और ब्रह्मा को फिर से हवाले कर दिया? हयग्रीव, हयग्रीव। ये हयग्रीव कौन से रूप के थे? आधे नर आधे घोड़े की, हयग्रीव। ग्रीव मतलब सर, जैसे रावण का नाम है दशग्रीव जिसके सर दस थे, जैसे हयग्रीव, हय मतलब घोड़ा। तो जैसे नरसिंह भगवान का ऊपर उनका सिंह का था, नीचे का भाग मनुष्य का था, नर का, इसलिए उनको नरसिंह कहते हैं। तो ये हयग्रीव है। हयग्रीव भगवान ने ये वेदों को बचाकर ब्रह्मा जी को वापस दे दिया। तो खैर ब्रह्मा जी के अंदर, हृदय के अंदर ये वेदों का ज्ञान रह जाता है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में सुंदर वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी कैसे वेदों की रचना करते हैं। जैसे उनको ज्ञान मिलता है हृदय में और वो तपस्या करने लगते हैं, फिर उनके मन में सूक्ष्म रूप में आध्यात्मिक ध्वनि आती है जो बाहर निकलती है ओमकार के रूप में। आचार्य बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने बाहरी श्रवण पद्धति को कर्णों को बंद कर सकता है, केवल ब्रह्मांड की आवाज को, सूक्ष्म आवाज को सुन सकता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम लोग ऐसे आवाज को कैसे सुने? इतने मोटर गाड़ियों की, रेलगाड़ियों की पॉम पॉम आवाज आती है, और अगर रेलगाड़ी भी नहीं, हम जंगल में भी जाए तो हमारे मन की आवाज, अरे बाप, ये तो बहुत बड़ी आवाजें हैं। और एक आवाज नहीं, लाखों आवाज में हमारे मन बोलता है, ये विचार, वो विचार, आज का विचार, कल का विचार, परसों का विचार, इधर का विचार, उधर का विचार, इस व्यक्ति का विचार, उस व्यक्ति का विचार, इस घटना का, उस घटना का, करोड़ों लाखों आवाजें हमारे मन में हैं। इसलिए हम ब्रह्मा जी के हृदय में जो सूक्ष्म वाणी थी, ध्वनि थी, उसको हम सुन नहीं पाते हैं। लेकिन वही सूक्ष्म वाणी जो उनके हृदय में थी, वो ओमकार के रूप में बाहर आई। और फिर ओमकार जो कि मूल ध्वनि है इस सारे ब्रह्मांड की, उससे सारे अक्षर आए। अक्षर जानते हैं, जिनसे आप लिखते हैं, बोलते हैं, क ख ग घ, ये सब आए अक्षर। और अक्षर इनमें से सब कुछ आए, जो स्पर्श है या जो ह्रस्व हो, दीर्घ में, सब में सारे तरह के अक्षर वगैरह आ गए। और इस तरह से ये अक्षर भी अक्षर है। अक्षर मतलब क्या है? जिसका नाश नहीं होता है। जैसे अ, इसका नाश हो सकता है कभी? अ हमेशा रहेगा, आ ये रहेगा, ये ध्वनि है, ये कोई भाषा नहीं है। लोग बोलते हैं कि अ आ ई ई ये तो संस्कृत भाषा है। नहीं नहीं, ये तो संस्कृत भाषा, ये नाम संस्कृतम, ये बाद में आया। जिसको सुनने से शुद्धिकरण होता है उसको संस्कृतम कहते हैं, इसलिए ये संस्कृत भाषा हो गई, संस्कृतम। लेकिन ये तो मूल ध्वनि है ब्रह्मांड की, ये कोई साधारण भाषा नहीं है, इसलिए इसको देव भाषा कहते हैं। तो ये ध्वनि, सारे अक्षर वगैरह आ गए, साथ साथ में सारे सात विहृति जो हैं, जो भू भुवस्व मह जन सत्य तप इत्यादि, ये भी सब आ गए। और साथ साथ जो अलग अलग होम करने की पद्धति, वो भी ज्ञान आ गए। और फिर तो ब्रह्मा जी के चार मुखों से ये ओमकार भी आए, ये सारे अक्षर भी आए, और ये साथ में विहृति इत्यादि सब कुछ आ गए। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं और ब्रह्मा जी चारों मुख से बोल सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ये जो भी अक्षर आए ओमकार से, उनको अलग अलग उन्होंने कॉम्बिनेशन में अलग अलग तरह से जोड़कर उनको वेदों के मंत्र बनाए। और सारे मंत्र ब्रह्मा जी के मुख से आए, चारों मुखों से, वैदिक मंत्र चारों मुखों से निकल रहे थे। और इस तरह से ब्रह्मा जी ने वेदों की निर्मिति की। जब वेदों का निर्माण हो गया तो ब्रह्मा जी बड़े संतुष्ट हुए। तो उन्होंने सोचा, अब ये वेदों का ज्ञान जो है मुझे किसी को सिखाना होगा। तो ब्रह्मा जी, वैसे देखा जाए तो इस ब्रह्मांड के भीतर पहले गुरु हुए, मतलब जो जीव गुरु हुए, उनके जो पुत्र थे वो ज्यादातर सब महाऋषि थे, बड़े बड़े शिक्षित योग्य तपस्वी ब्राह्मण ऋषि। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मूल एक वेद को चार भागों में विभाजित कर दिया। चार वेदों के नाम कौन से हैं? पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये चार वेद हैं जिनको चार संहिता कहते हैं। और इन चार संहिताओं को, वेद को चार संहिताओं में विभाजित किया, साथ साथ पुराण भी थे। और इन चारों जो संहिता हैं, इनको उन्होंने अलग अलग उनके एक शिष्यों के हवाले कर दिया, अर्थात उनको सिखा दिया। जो सामवेद है उन्होंने पैल ऋषि को सिखा दिया। और उसके बाद में जो अन्य और भी ऋषि हैं, जैसे कि वैशंपायन, उनको उन्होंने यजुर्वेद सिखा दिया। और फिर जैमिनी ऋषि, उनको कौन सा है दूसरा वेद, सामवेद सिखा दिया। और तीसरे जो अथर्ववेद है, सुमंतु नाम के उनके जो ऋषि थे, उनके पुत्र, उनको सिखा दिया। तो इस तरह से चारों ऋषियों को, इस तरह से शिष्यों को उन्होंने चारे वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी ने प्रदान कर दिया। इस तरह से ब्रह्मा जी ने जब इनको सिखाया तो इन्होंने भी आगे चल के अपने अपने शिष्यों को सुना दिया। तो इस तरह से वेदों का ज्ञान इस जगह हो गया। अब हुआ ये कि जब ये ज्ञान सारा निकल आया, अनादि काल से, ब्रह्मा जी के जन्म से ये ज्ञान परंपरा में चलते आया। और जितने भी बड़े ऋषि वगैरह हुए, उन्होंने इस वैदिक ज्ञान को संभाला और फिर अपने शिष्यों को प्रदान कर दिया। इस तरह से वैदिक ज्ञान सुरक्षित रूप से गुरु शिष्य परंपरा में चलते आया आज तक। लेकिन आप तो जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के भीतर चार युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जो धर्म है वो सत्ययुग में विद्यमान पूरी तरह से रहता है, और जैसे जैसे युग बीतते जाते हैं वैसे वैसे इनका घटन होते जाता है धार्मिक सिद्धांतों का। इसलिए द्वापर युग के अंत में जब सब ऋषि मुनि हैं वो विचार करते हैं कि कैसे कलयुग के लोगों के लिए धर्म का मार्ग बतलाया जाए। तो ऐसे कोई महान ऋषि क्या करता है, वो बैठ के परमात्मा से प्रेरित होकर इन वेदों को लिखित रूप में प्रस्तुत करता है, उनका कलयुग के लोगों के समझ के हिसाब से विभाजित करता है। तो ऐसे ऋषियों को व्यास कहते हैं, क्योंकि व्यास मतलब संपादन करना। वैसे वो ज्ञान तो पहले से ही है, वेद ज्ञान। वेद का मतलब ही है ज्ञान, विद धातु। तो इस तरह से ये पहले तीन युगों में ये ज्ञान जो होता है वो लिखित रूप में नहीं होता, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं होती है सत्य, त्रेता और द्वापर युग में। केवल कलयुग में लिखने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि कम है, स्मृति शक्ति कम है, कलयुग में हम कुछ नहीं याद नहीं रख सकते हैं। जैसे चार युग बीतते जाते हैं सारे अच्छे गुणों का घटन होता है, इसमें से स्मृति शक्ति भी एक है। पहले के तीन युगों में सभी लोग श्रुतिधर हुआ करते थे, मतलब जो भी वो एक बार सुनते थे वो याद रख सकते थे। और सारे शिष्य जब गुरु के आश्रम में जाते थे गुरुकुल में, और गुरु मंत्रों का उच्चारण करते थे, शिष्य मंत्रों को दोहराते थे और उनको याद रह जाता था। कितनी सुंदर पद्धति थी, बस आश्रम में बैठकर गुरु के पीछे पीछे बोलते रहना और उनको याद रह जाता था। लेकिन द्वापर के अंत में जब ऋषि लोग सोचते थे कि आने वाले युग में क्या होगा, तो वो जानते थे कि कलयुग में लोगों की स्मृति शक्ति बहुत कम होने वाली है, वो याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए लिखित रूप में ये सब प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, और साथ साथ में इस तरह से इस वैदिक ज्ञान का विभाजन करना होगा कि लोग इनको अच्छी तरह से समझ लें। इसलिए कोई ना कोई एक योग्य व्यक्ति व्यास बन जाता है, मतलब संपादन करता है। इसका मतलब है वेद व्यास एक नहीं है, जितने भी द्वापर युग होते हैं उतने द्वापर युग के अंत में, हर एक द्वापर युग के अंत में एक व्यास देव होता है, एक वेद व्यास होते हैं। अब देखिए ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, हम दो रविवार पहले चर्चा कर रहे थे कितने साल हो गए ब्रह्मा जी के, उनके समय के हिसाब से 50 साल पूरे हो गए। 50 साल पूर्ण होने के बाद ये उनका पहला दिवस है, और इस पहले दिवस के अभी आधा समय बीत गया है। ब्रह्मा जी के हर एक दिवस में कितने मनु आते हैं, 14 मनु आते हैं। तो इस मनु के इस जीवन की अवधि को मनवंतर कहते हैं। तो ऐसे 14 मनु मतलब 14 मनवंतर, और ये 7वां मनु का समय चल रहा है, 7वां मनवंतर। ये कौन से मनु का राज्य चल रहा है, वैवस्वत मनु। तो ये ब्रह्मा जी के इस दिवस के 7वें मनवंतर में 28वां चतुर्युग चल रहा है। 70 से भी ज्यादा चतुर्युग एक मनवंतर में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के इस एक दिवस के 7वें मनवंतर के 28वां चतुर्युग चल रहा है, मतलब ब्रह्मा जी के इस एक मनवंतर के भीतर ही 28 वेद व्यास हो चुके हैं। और ब्रह्मा जी के हर एक दिन में कितने होंगे, सोचिए आप, गणित कर सकते हैं। तो ये वेद व्यास, हमारे वेद व्यास पहले वेद व्यास नहीं है, हर एक द्वापर के अंत में ऐसे कोई न कोई वेद व्यास होते रहता है। तो एक बार हुआ ये, ऐसे भागवत के 12वें स्कंध में वर्णन आता है कि जो सारे ब्रह्मांड के नेता हैं, जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो सब भगवान श्री विष्णु के पास प्रार्थना लेकर गए कि अभी कलयुग आने वाला है तो इसमें धर्म का संरक्षण कौन करेगा, किस तरह से लोगों को धर्म का मार्ग बतलाया जाएगा, कैसे लोगों को पता चले कि धर्म क्या है। तो फिर भगवान ने उनसे उनको जवाब दिया कि ठीक है, मैं अगले अभी थोड़े ही समय बाद मैं पराशर मुनि के हवाले सत्यवती देवी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा और मैं व्यास देव के रूप में मैं वेदों की रचना करूंगा। श्रीमद् भागवत में शब्द इस्तेमाल किया गया है अंशांश कलया विभुः, अंश के कला, मतलब भगवान कृष्ण के अंश वो कौन है? वो संकर्षण भगवान है। उनके अंश कौन है? विष्णु भगवान है। तो ये विष्णु के भी अंश हैं, कला व्यासदेव। इसका मतलब है कि श्रील व्यासदेव जो अब हमारे व्यासदेव हैं, हमारे समय के व्यासदेव हैं, वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि चिंता नहीं करो, मैं आऊंगा और उनके हृदय, उनके सत्यवती के गर्भ में मैं जन्म लूंगा और उस समय मेरा नाम होगा कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो उनका नाम कृष्ण द्वैपायन क्यों हुआ, इसके पीछे ये कहानी है कि एक ऋषि थे पराशर मुनि। पराशर मुनि, वैसे आप सब पराशर मुनि को एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक के लिए जानते हैं। कौन सा श्लोक? भगवान की परिभाषा पराशर मुनि ने की है और इस श्लोक को प्रभुपाद जी हमेशा दोहराया करते थे। कौन सा है वो श्लोक? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रिय ज्ञानम वैराग्योश्चैव सन्नम भग इतिंगणा। इसमें ये पराशर मुनि बताते हैं कि भगवान कौन है, जिनके पास षड ऐश्वर्य हैं वो भगवान है, भगवान। भग मतलब ऐश्वर्य। तो ये है पराशर मुनि। पराशर मुनि वो वशिष्ठ मुनि के पोते थे। पराशर मुनि के पिताजी का नाम था महर्षि शक्ति और उनके माता का नाम था अदृश्या। जब अदृश्या देवी केवल 12 साल की थी उस समय पराशर मुनि उनके गर्भ में आए, फिर उनका जन्म हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पिताजी महर्षि शक्ति का की हत्या कर दी एक असुर ने जिसका नाम था कल्माषपाद। तो जब जन्म हुआ पराशर मुनि का, उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सारे पृथ्वी का संहार करने के लिए योजना बनाई। उस समय स्वयं वशिष्ठ मुनि को आना पड़ा, वहां पर उनके दादा को आना पड़ा और उनसे निवेदन करना किया कि ऐसा नहीं करना। फिर आगे चल के पराशर मुनि ने एक सारे राक्षसों की हत्या करने के लिए एक बड़ा यज्ञ संपन्न करने का विचार किया। उस समय भी महर्षि पुलस्त्य आए और उन्होंने भी उनसे निवेदन किया कि ऐसा संहार सब मत करना, भगवान के सारे योजना जो है, उनकी व्यवस्था है, वो विचलित हो जाएगी। तो इसलिए उनके शब्दों का सम्मान करके पराशर मुनि ने ऐसा नहीं किया। पराशर मुनि जनक महाराज के गुरु भी रहे और ऐसे हुआ कि एक बार जब पराशर मुनि नदी पार कर रहे थे तो नदी पार करने के लिए एक माझी चाहिए। पुराने जमाने में नदी पार करने के लिए नौका चलाने वाले लोग रहते थे, माझी। तो जब वो पहुंचे उन्होंने देखा कि केवल एक सुंदर युवती वहां थी जिसका नाम था सत्यवती। ये सत्यवती वास्तव में उपचर वसु की कन्या थी, पुत्री थी। वसु भी एक तरह के देवता होते हैं, अलग अलग तरह के देवता होते हैं, जैसे आदित्य हैं, रुद्र हैं, वसु हैं, इंद्र, विवस्वान इत्यादि ये आदित्य हैं, फिर शिवजी इत्यादि रुद्र हैं और ये वसु भी होते हैं। तो ये उपचर वसु की पुत्री थी और ये उपचर वसु ने एक मछली वाली स्त्री जिसका नाम था मत्स्यगर्भा, उसके गर्भ में सत्यवती को जन्म दिया था। और फिर उसके बाद में एक मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने सत्यवती का देखभाल किया और हमेशा वो मछलियों के साथ में ही रहती थी, इसलिए उसके शरीर का गंध भी मछलियों की तरह था। आप जब कोई बाजार में जाते हैं जहां मछली, आप क्या देखते हैं? सब जगह मछली का गंध ही आता है। कोलीवाड़ा में जाइए कोई तो वहां क्या होता है? सब मछली का ही गंध आता है। तो इस तरह से सत्यवती के शरीर से भी मछलियों का गंध ही आता था क्योंकि दिन रात मछलियों के साथ में रहती थी। तो वो नौका चलाने का काम भी करती थी। तो पराशर मुनि जब वहां पर आए तो सत्यवती देवी तैयार हुई इस ऋषि को नौका में ले जाने के लिए, नदी पार करने के लिए। लेकिन सत्यवती बहुत सुंदर भी थी और नदी के बीच पहुंचते समय पराशर मुनि उनसे आकर्षित हुए और उससे पुत्र उत्पत्ति की योजना रखी, प्रस्ताव रखा सामने। और उस समय पराशर मुनि के शक्ति से वहां बादल आ गए और उस समय वहां व्यास देव की का जन्म हो गया। तो व्यास देव का जन्म क्योंकि नदी के बीच में एक द्वीप के ऊपर हुआ, इसलिए उनका नाम रहा द्वैपायन, जो द्वीप से द्वीप के ऊपर जिन्होंने जन्म लिया। और क्योंकि शरीर से वो सांवले थे, कृष्ण मतलब काला, तो उनका नाम कृष्ण द्वैपायन हुआ। और आगे चल के उन्होंने सारे वेदों का संपादन किया, इसलिए उनका नाम है व्यास, व्यास देव। वो भगवान के अवतार हैं इसलिए देव, इसलिए इनका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन व्यास देव। इस तरह से व्यास देव का जन्म यहां पर हुआ। तो कोई पूछ सकता है कि इतने बड़े ऋषि होने के बाद पराशर मुनि ने इस तरह से पुत्र की उत्पत्ति क्यों की? पहली बात तो यह है कि आपको याद होगा कि अभी अभी हमने बताया कि भगवान विष्णु ने भविष्यवाणी की थी कि मैं सत्यवती देवी के गर्भ में मेरे अंशावतार के रूप में जन्म लूंगा पराशर मुनि के माध्यम से। तो भगवान की योजना थी, ये भगवान की इच्छा थी, इसलिए पराशर मुनि जैसे महान ऋषि को उन्होंने निमित्त बनाया व्यास जीव व्यास देव का जन्म के लिए। और दूसरी बात तो यह है कि ऐसे महान ऋषि जैसे कि पराशर मुनि, इनकी हम नकल नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति कहे कि पराशर मुनि ने ऐसे किया तो हम भी ऐसे करेंगे, तो ऐसे योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि हम पराशर मुनि जैसे शक्तिशाली ऋषि नहीं है। हम अचानक आकाश में काले बादल तैयार नहीं कर सकते जिससे कि सब कुछ ढक जाए। हमारे अंदर ऐसी शक्ति नहीं है कि हम वेद व्यास जैसे पुत्र को उत्पन्न कर सके। प्रभुपाद कहते थे कि अगर वेद व्यास जैसे पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति हो तो फिर पराशर मुनि का नकल कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। और साथ साथ पराशर मुनि इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने वरदान, दो वरदान दिए सत्यवती को कि पुत्र उत्पत्ति होने के बाद भी तुम कन्या ही रहोगी, ये पहला वरदान। और दूसरा वरदान कि तुम्हारे शरीर में जो मछलियों का गंध आता है वो अब नहीं आएगा, और ऐसा सुंदर सुगंध आएगा कि मीलों मीलों तक ये सुगंध फैल जाएगा। फिर पराशर मुनि वहां से निकल पड़े। तो ये है श्री वेदव्यास जी के जन्म की कथा। और वेदव्यास जी जैसे ही उनका जन्म हुआ, बहुत जल्दी वो परिपक्व हो गए, जन्म के साथ साथ ही बड़े हो गए, और बड़े होकर वहां से निकल पड़े। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जो कि आगे चल के वेदव्यास जी के पुत्र बने, वो भी जबाली देवी जो कि वेदव्यास जी की पत्नी थी उनके गर्भ में पूरे 12 वर्ष रहे। और फिर वेदव्यास जी को भगवान कृष्ण को बुलाना पड़ा वहां पर कि आइए कृपया मेरे पुत्र को उसकी माँ के गर्भ से बाहर आने के लिए बोलिए, वो तो बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, कहता है मैं माया में पड़ जाऊंगा, मुझे बाहर ही नहीं आना है, यहाँ कोई माया का प्रभाव नहीं है तो मैं नहीं आऊंगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है संसार में, कोई व्यक्ति बोले मैं माँ के पेट से बाहर ही नहीं आऊंगा, हो सा होता है ऐसे? तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने आकर हाथ जोड़कर फिर सुखदेव गोस्वामी बाहर आए। और जैसे बाहर आए तो तुरंत घर से निकल पड़े, वैरागी बन गए। और वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे भागे, हा पुत्र कह के। हालांकि वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे लेकिन गृहस्थ थे, तो पुत्र के प्रति आसक्ति थी। देखिए गृहस्थ आश्रम में कितनी आसक्ति होती है कुटुंब के सदस्यों के प्रति। तो खैर ठीक उसी तरह से जब वेदव्यास जी का जन्म हुआ तो वो भी तुरंत तरुण हो गए, बड़े हो गए और वहां से निकल पड़े। लेकिन वो साधारण कोई युवक नहीं थे, साक्षात भगवान के अवतार थे, अंश अवतार। इसलिए उन्होंने अपनी माता सत्यवती से कहा कि हे माता, मैं अब चला तपस्या करने के लिए, लेकिन जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े केवल मेरा स्मरण कीजिए और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास मौजूद हो जाऊंगा। इस तरह से वेदव्यास जी वहां से निकल पड़े। तो वेदव्यास जी का जन्म इस तरह से हो गया। और वेदव्यास जी भी इस समय के हमारे वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास, इनका उल्लेख भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भी करते हैं, जब वो उद्धव को उद्धव गीता सुनाते हैं। और उस समय वो बताते हैं कि द्वैपायनो अस्मि व्यासानाम, वो कहते हैं कि जितने सारे व्यास हैं उनमें से द्वैपायन मैं हूं। भगवान ऐसे उदाहरण गीता में भी देते हैं, 7वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, जब यो इस संसार के अलग अलग वर्ग लेते हैं और उनके हर एक श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति को बोलते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि पहाड़ों में से मैं हिमालय हूं, इस तरह से तो वो बोलते हैं कि जितने भी व्यास हैं उनमें से द्वैपायन मैं हूं। मतलब अलग अलग व्यास देवों में से हमारे जो व्यास देव हैं उनको भगवान श्री कृष्ण काफी विशेष मानते हैं, ऐसे वो स्वयं एकादश स्कंद में वर्णन करते हैं। तो इस तरह से वेद व्यास या व्यास देव जी का जन्म हुआ और आगे चल के उनको वेदों का संपादन करना था। उन्होंने भी सोचा कि क्या किया जाए, अब आने वाले कलयुग के लोग मंद बुद्धि के होने वाले हैं, उनकी आयु भी बहुत कम होने वाली है, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। इस कलयुग के लोग बड़े उपद्रित अवस्था में रहेंगे, मंद बुद्धि के रहेंगे, आलसी रहेंगे, कम आयु के रहेंगे, तो ऐसे लोगों को तपस्या करने की शक्ति नहीं होगी, भगवान में श्रद्धा नहीं होगी, धार्मिकता नहीं होगी, तो ऐसे लोगों के लिए मुझे वेद विभाजित करके बहुत आसान बनाना होगा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वेद ज्ञान को विभाजित कर दिया। वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि जब ब्रह्मा जी के चार मुखों से वेद निकले, केवल वैदिक मंत्र निकले, लेकिन वो सब मिश्रित अवस्था में थे, अलग अलग मंत्र एक साथ निकले, एक मिश्रण था, मिक्सचर था वो सारे मंत्रों का। जिस और फिर वेद व्यास, जितने भी वेद व्यास आते हैं उनका काम क्या होता है कि इन सारे मंत्रों का विभाजन करना, कि ये मंत्र इस भाग में, वो मंत्र इस भाग में रखना, और फिर चार वेद बनाते हैं। जिस तरह से अगर किसी एक रत्न या मणियों के भंडार में बहुत सारे रत्न या मणि होते हैं तो उनको अलग अलग श्रेणी में, वर्गों में विभाजित करना पड़ता है, तो जो बहुत दक्ष व्यक्ति है, ज्ञानी है, जो रत्नों को और मणियों को अच्छी तरह से पहचान सकता है, वो चुनेगा, हर एक मणि को देखेगा, हाँ ये इस वर्ग में आएगा, हाँ ये कम मूल्यवान, ये इधर, हाँ ये ज्यादा, इसकी कीमत इतना, यहाँ, इस तरह से अलग अलग भागों में उसको विभाजित कर सकता है। ठीक उसी तरह से ऐसे कोई दक्ष व्यास चाहिए जो वेदों के मंत्रों को विभाजित कर सके। तो इस तरह से कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इन वैदिक मंत्रों को, जो कि मणि या रत्न के समान है, मूल्यवान है, उनका विभाजन कर दिया, और विभाजन करके चार भागों में उनको करके फिर अपने अपने शिष्यों को उन्होंने प्रदान कर दिया। इस तरह से आगे ये परंपरा चलती रही। जहां तक वेद व्यास जी का सवाल है, वेद व्यास जी के बारे में बहुत कुछ अलग अलग शास्त्रों में भी बताया हुआ है, लेकिन खास करके हमारे वेद व्यास के बारे में बताया गया है कि इन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना भी की और साथ साथ पुराणों की भी, वेदांत सूत्र की, उपनिषदों की। जिस तरह से उन्होंने पैल, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंतु, इन ऋषियों को चार वेद प्रदान किए, ठीक उसी तरह से उन्होंने सारे पुराणों का जो ज्ञान है वो रोमहर्षण सूत, जो कि उनके एक शिष्य थे, उनको प्रदान किया, और रोमहर्षण सूत ने छह शिष्यों को यह ज्ञान दिया, और इन छह शिष्यों से सूत गोस्वामी ने पुराणों का ज्ञान सीख लिया। सूत गोस्वामी कौन है? जिन्होंने नैमिषारण्य में वहां एकत्र हुए ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत सुनाया। श्रीमद् भागवत तो सुखदेव गोस्वामी, जो कि व्यासदेव के पुत्र हैं, उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाया था, और उस सभा में बहुत सारे ऋषि मुनि थे, उनमें से सूत गोस्वामी भी उपस्थित थे। तो उन्होंने आगे चल के यही ज्ञान उन एकत्रित ऋषियों को दे दिया नैमिषारण्य में। तो सूत गोस्वामी ने यह ज्ञान रोमहर्षण सूत के शिष्यों से सीख लिया था, इसलिए सूत गोस्वामी को भी सारे पुराणों का ज्ञान था, और अब यहाँ सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने श्रीमद् भागवत सीख लिया, जो कि अमल पुराण है, सर्वश्रेष्ठ पुराण है, महापुराण है, और उन्होंने ये महापुराण का वर्णन या कथा नैमिषारण्य में कर दी थी। तो श्रीमद् भागवत, इसकी रचना श्री व्यासदेव जी ने कैसे की, इसका वर्णन भी बड़ा सुंदर है। इस श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में आता है, बताया जाता है कि वेद व्यास जी का आश्रम बद्रिक आश्रम में है, जो कि हिमालय में है, सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर एक स्थान है जिसका नाम है श्याम्याप्रस। श्याम्याप्रस में वेद व्यास जी तपस्या करने बैठे, और एक दिन जब स्नान आदि करने के बाद वो अपने ध्यान के आसन में बैठे, उनका मन थोड़ा चल विचल हो गया। अपने आप ही मन में विचार करने लगे कि मैंने सारे उपनिषदों की रचना की, चार वेदों की रचना की, वेदांत सूत्र भी मैंने लिखा, और ये सोचकर कि ये कलयुग के लोग इस ज्ञान को भी नहीं समझ पाएंगे, अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए मैंने महाभारत भी लिखा जो कि कम बुद्धि वाले लोग भी आसानी से समझ पाए, और इतना सब करने के बाद भी मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरा मन अभी तक संतुष्ट नहीं है। क्या कारण हो सकता है इसके लिए? प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक सुंदर बात बताते हैं, जो ज्ञान योगी लोग हैं, मायावादी इत्यादि लोग हैं, उनको वेदांत सूत्र पढ़ने का बहुत शौक है। ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, आखिर ये भी तो शास्त्र है। परंतु केवल वेदांत पढ़ने से और वेदांत का जो असली भक्ति का संदेश है वो अगर नहीं समझेंगे तो हमारा वेदांत का पढ़ना निष्फल रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी को पदवी दी गई भक्ति वेदांत, जो वेदांत के भक्ति के निष्कर्ष को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो यूं ही वेदांत सूत्र या वेदांत पढ़ते हैं, क्योंकि सारे वेदों का अंत सूत्र रूप में लिखा गया है, तो उनको क्या लाभ होगा? जब वेदांत सूत्र के रचना करने वाले वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं हुए वेदांत को लिखने के बाद, तो जो वेदांत पढ़ते हैं वो कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? तो खैर, फिर वो आगे सोचने लगे कि क्या ये हो सकता है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किया, उनके सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन नहीं किया, क्या इसलिए मेरे हृदय में संतुष्टि नहीं है? तो इसके बाद व्यास देव जी ध्यान में स्थित हो गए, और ठीक उसी समय उनके गुरु श्री नारद मुनि वहां पर आए, और जैसे ही नारद मुनि को देखा व्यास देव जी ने, वो उठे और उठकर उनका स्वागत किया, स्वागत करके उनके चरणों की पूजा की, और फिर उनको बिठाया, अच्छा आसन वगैरह दिया, और नारद मुनि ने उनको हल्की मुस्कान से पूछा कि हे मुनि, क्या सब कुछ आपके साथ ठीक ठाक है? आपने इतने बड़े बड़े और सुंदर ग्रंथों की रचना की, जैसे महाभारत, वेदांत सूत्र, जो कि इतने श्रेष्ठ श्रेणी के हैं, इतना सब करने के बाद मैं आशा करता हूं कि आपका मन शांत होगा, खुश होगा। तो उस समय व्यास देव जी कहने लगे कि आप जैसे महाभागवत त्रिकालज्ञ होते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, तो आप ये भी बताइए कि मेरे मन में जो असंतुष्टि की भावना है उसका क्या कारण हो सकता है? अब व्यास देव ने शिष्य का रूप धारण किया, हालांकि वो आदि गुरु हैं, भगवान के अवतार हैं, और नारद मुनि एक जीव हैं, फिर भी गुरु शिष्य परंपरा चलती है। तो व्यास देव ने अपने आप को शिष्य बनाया, नारद देव को अपना गुरु स्वीकार किया, और फिर नारद मुनि ने उनको जवाब दिया, कहने लगे कि देखो, हालांकि आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन आपने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान नहीं किया, उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं किया, आपने धर्म के नाम पे ये कर्म कांड, ज्ञान कांड इत्यादि लिखे हैं, और इनसे केवल जो साधारण व्यक्ति है वो भोग के मार्ग में आगे प्रेरित हो रहा है, धर्म का सहारा लेकर वो केवल भोग कर रहा है, लेकिन इस भवसागर से मुक्त होकर भगवान कृष्ण के धाम में कैसे जाना, इसकी जानकारी आपने नहीं दी है। आपके लिखे हुए शास्त्रों के द्वारा आदमी केवल इस बद्ध अवस्था में बंधा हुआ रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना, और जो व्यक्ति ऐसे करता है, समझ लीजिए कि अगर उसके रचना में कोई कमियां भी हो तो फिर भी उसमें कोई गलती नहीं है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम बद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। नारद मुनि ने कहा कि देखो, तद्वाग विसर्ग जनताग विप्लवो, ताग विप्लवो, वो लोगों के हृदय में एक ऐसी क्रांति पैदा कर देते हैं कि उनकी पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। भगवान कृष्ण की कथा इतनी शक्तिशाली है,
तो देखिए कृष्ण कथा से जो क्रांति उत्पन्न होती है और बंदूक और तलवार से जो क्रांति उत्पन्न होती है उनमें कितना अंतर होता है। इतिहास में कितने सारे क्रांतियों के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना, भारत में भी और पृथ्वी के अलग अलग जगह में, रूस देश में, फ्रांस में, अमेरिका में, भारत में, जगह जगह ऐसे क्रांतियां हुई हैं और होती रहेंगी। लोग गोली से, तलवार से, अस्त्र शस्त्रों से अन्यों की हत्या करते हैं, फिर पुराने राजा की तरह नया राजा बैठ जाता है उसके स्थान में, फिर से उसको गोली मारकर कोई और उड़ा देता है, नया क्रांति हो जाता है। लेकिन बात वही, बात बदलती नहीं है, वही दुख रह जाते हैं, वही पाप रह जाते हैं, वही जन्म मृत्यु का चक्कर रह जाता है। लेकिन यहां नारद मुनि देखिए कितनी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण कथा ये ऐसा क्रांति उत्पन्न कर देता है ये सारे विश्व भर में, जिससे कि जनता या जो प्रजा के हृदय में जो पाप करने की प्रवृत्ति है वही नष्ट हो जाती है। यस्मिन प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि, हालांकि इसका इसकी रचना में कोई कमी त्रुटि भी हो व्याकरण में इत्यादि कुछ और में अलंकार में की दृष्टि से, लेकिन फिर भी ये परिपूर्ण है। नामानि अनंतस्य यशोंकितानि यत्, ये भगवान श्री कृष्ण का नाम गुण रूप इत्यादि का वर्णन करने से सारा कल्याण हो जाता है सारे जगत का। और इसलिए जो साधु लोग होते हैं, जो वास्तव में असली ज्ञानी लोग होते हैं, शुद्ध हृदय के लोग होते हैं, वो ऐसे कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं। श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः, श्रृण्वन्ति मतलब सुनना, गायन्ति मतलब बोलना, गृणन्ति मतलब स्वीकार करना। इसके विपरीत जो लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं करते हैं और केवल कोई भौतिक चीजों के बारे में वर्णन करते हैं, तो ऐसे लोग या ऐसे जो कथाएं हैं वो केवल ऐसे तीर्थ स्थानों के समान हैं जहां केवल कौवे निवास करते हैं। यद वायसम तीर्थम उशंति मानसा, यहां पर जो कौवे होते हैं मतलब जो कम बुद्धि वाले होते हैं, जो बिल्कुल कंजूस टाइप के लोग होते हैं, जिनको भक्ति नहीं करनी है, जो बहुत स्वार्थी रहते हैं, कृपण रहते हैं, उन लोगों के लिए तीर्थ स्थान है वायसम। वायस मतलब कौवा, तो ऐसे कौवों के तीर्थ स्थान है ये भौतिक कथाएं। लेकिन जो कृष्ण कथा है वो हंसों के लिए तीर्थ स्थान है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो हंस के समान होते हैं। हंस और कौवे में क्या अंतर होता है? कौवा एक गंदी जगह में जाता है। अगर सुंदर कोई बगीचा हो और उसमें सुंदर फूल इत्यादि हो, लेकिन कोने में कहीं थोड़ा सा कचरा पड़ा हो, कौवा कहां जाएगा? सीधे कचरे के पास जाके का 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 करेगा। लेकिन जो हंस है वो कहां निवास करते हैं? सुंदर सरोवर में, जहां सुंदर कमल पुष्प खिल रहे होते हैं, जहां मधुर पवन बह रहा होता है, और ऐसे रम्य और मधुर जगह में वो निवास करते हैं। तो इसी तरह से भक्त जो होते हैं वो केवल मंदिरों में जाते हैं, अच्छे अच्छे स्वच्छ जगहों में जाते हैं। कौवे जैसे जो लोग होते हैं कहां कहां जाते हैं? वो सब शराब के अड्डे में जाते हैं, सिनेमा के स्थान में जाते हैं, अपने घर को भी ऐसा स्थान बनाते हैं टीवी इत्यादि लगाकर। तो अगर हमारे घर को हमें भी कौवे का तीर्थ स्थान नहीं बनाना है तो हमें भी घर से टीवी निकाल देना है, घर से जो हमारे सिनेमा के पत्रकार वगैरह हैं वो भी निकाल देने हैं, घर में जो संसारी फालतू की बातें होती है उनको बंद करना चाहिए, और अपने घर को भी एक हंसों का निवास स्थान बनाना चाहिए। हंस की एक विशेषता ये होती है कि हंस दूध और पानी के मिश्रण से केवल दूध निकाल सकता है चूस के। कितनी सुंदर कला है देखिए, आजकल बहुत जरूरी है ये, लेकिन नहीं है किसी के पास। हम जो भी दूध खरीदते हैं उसमें पानी ज्यादा दूध कम, दूध में पानी मिलाया है या पानी में दूध मिलाया है ये कहना मुश्किल है आजकल। ज्यादा पानी होता है कम दूध मिलाते हैं उसमें से, लेकिन आजकल हंस की शक्ति हम तो नहीं कर सकते, हमको पीना पड़ता है जो भी है। इसलिए हंस जो होते हैं, हंस जैसे जो लोग होते हैं संसार में अर्थात भक्त, वो संसार में से इन भौतिक चीजों में से केवल उन चीज को चुनते हैं जो कि भक्ति के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, और जो चीज भक्ति में लाभदायक नहीं है उनको त्याग देते हैं। ये सिनेमा थिएटर और शराब के अड्डे क्या काम भक्ति में? उनको त्यागते हैं। तो ऐसे जो भी चीज अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए उन चीजों को त्यागते हैं, मतलब पानी को त्याग देते हैं, और जो भी चीज अनुकूल है मतलब दूध के समान है उसको स्वीकार करते हैं। जैसे भक्तों का संग है, जैसे मंदिर में जाना है, भगवान का नाम का जप है, कृष्ण कथा है, इसलिए आप सब हंस हैं, बेलगाम में कौओं की भी कमी नहीं है, तो हमें भी कौओं की तरह नहीं कौ 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 नहीं करना है। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, उनको साहित्य अकादमी का कोई पुरस्कार मिला है तो ये बहुत बड़े आदमी हो गए, हंस हो गए। नहीं, बड़े नोबेल बड़ा बड़ा पुरस्कार भी मिला हो तो फिर भी वो कौवे के कौवे ही रहे, दूसरे कौवे ने तीसरे कौवे को पुरस्कार दिया, क्या फर्क पड़ता है, कौवे तो कौवे ही रहेंगे। केवल कोई कौवा बड़े मधुर ढंग से कौ कौ करे तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कौवा जो होता है बहुत ही अच्छे ढंग से नहीं, मधुर ढंग से नहीं, बिल्कुल बेसुरे आवाज में कौ कौ करता है, कोई कौवा जो है उनके समाज में जो अच्छा गाना गाता है उनकी तुलना से वो थोड़ा मधुर गाता होगा, कौ कौ करता होगा, लेकिन फिर भी कौवा तो कौवा ही है। तो किसी भी उपन्यासकार को, कथाकार को जो कि भगवान का भक्त नहीं है, उसको पुरस्कार भी मिले तो क्या कीमत है इसकी, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो कृष्ण कथा बोलता है, कृष्ण के बारे में कुछ लिखता है, सुनता है, अगर वो इतना शिक्षित न हो, उसको उच्चारण सही ढंग से करना नहीं आता, व्याकरण का ज्यादा ज्ञान नहीं है, अपने शब्दों को अलंकारों से कैसे सुशोभित करना है वो ठीक से नहीं जानता, कोई बात नहीं। इसलिए इसी बात को नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव जी को कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त हो तो फिर इसके रचनाओं में, उसके बोलने में भी कोई त्रुटियां भी हो इत्यादि तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी उसके वचन में ये शक्ति है कि वो सारे पापों को और पाप करने की प्रवृत्ति को भी नष्ट कर दे। इस तरह से नारद मुनि ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में ये उपदेश आता है, कृपया सभी इस भागवत के उपदेश को पढ़िएगा जो नारद मुनि व्यास देव जी को देते हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं इसमें। और अंत में नारद मुनि बताते हैं कि इसलिए कृष्ण कथा का एक ग्रंथ आप लिखो, और नारद मुनि वेद व्यास जी के ऊपर आशीर्वाद करके फिर प्रस्थान करते हैं। उस समय वेद व्यास जी फिर आगे चल के अपने स्थान में बैठ जाते हैं, फिर से ध्यान में बैठते हैं, शम्याप्रास उनके निवास स्थान में, उनके आश्रम में, और आचमन करने के बाद ध्यान में बैठते हैं, और गहरे ध्यान में जाने के बाद उनको एक दृश्य आता है जिसका वर्णन सुत गोस्वामी कहते हैं, भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तत अपाश्रयम्। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते मले, भक्ति योगे न मनसी, अपने मन को भक्ति योग में उन्होंने केंद्रित कर दिया भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, किन के ऊपर, पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित किया, अपश्यत पुरुषम पूर्णम, और उस दृश्य में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। अपश्यत मतलब देखा, पुरुषम पूर्णम पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को देखा, सम्यक प्रणिहिते मले, और उस समय उनका हृदय पूरी तरह से अमल या शुद्ध हो गया था क्योंकि वह सम्यक या परिपूर्ण ध्यान में स्थित थे, और उस समय भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपने ध्यान में देखा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अकेले नहीं थे, साथ में कौन था, मायाम च तद अपाश्रयम, माया देवी का दर्शन भी किया उन्होंने, माया देवी हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्रार्थना कर रही थी, च तद अपाश्रयम। तो व्यास देव जी ने देखा कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है और उनके साथ में माया देवी है जो कि सारे जगत को माया जाल में फंसा के रखती हैं, और वही माया देवी श्री कृष्ण की दासी हैं, हाथ जोड़कर उनके चरणों की सेवा के लिए आतुर खड़ी हैं। अपाश्रयम शब्द का तात्पर्य है कि वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रहती हैं, उनके कंट्रोल में, नियंत्रण में रहती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कभी माया में नहीं पड़ सकते क्योंकि माया सदा उनके नियंत्रण में रहती है। और इसके बाद सुत गोस्वामी बताते हैं, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं यत्कृतं चापि पद्यते। फिर व्यास देव ने सोचा कि देखो जीव इतने सारे बद्ध अवस्था में है, जीव तो वैसे शुद्ध है लेकिन फिर भी अपने आप को भौतिक समझता है, इस शरीर से अपना संबंध जोड़ लेता है, कितने दुख की बात है। और फिर आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, अनर्थ पशुमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सत्वत संहिता। वो कहते हैं कि ये भक्ति योग का जो पथ है इससे अनर्थों का उपशमन हो सकता है, मतलब सारे हृदय में हमारे जो अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ क्रोध, ये सब नष्ट हो सकते हैं। अनर्थ उपशमन साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, भगवान श्री कृष्ण का और एक नाम है अधोक्षज, अध अक्ष ज, अक्ष मतलब आंखें, ज मतलब जन्म लेना, मतलब जिन इन साधारण आंखों से जिनको नहीं देख सकते, हमारे साधारण दृष्टि के, हमारे साधारण भौतिक इंद्रियों के जो परे हैं, अधोक्षज वो कृष्ण, उनकी भक्ति हमें करनी चाहिए। और उनसे क्या होगा, हमारे हृदय के सारा दुख कष्ट इत्यादि सब मिट जाएगा। लेकिन सूत गोस्वामी शोक करते हैं, लोकस्य अजानतो, लेकिन साधारण लोग जो हैं इस सत्य को नहीं जानते हैं। विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, इसलिए बड़े विद्वान व्यास देव जी ने क्या किया, इस सात्वत संहिता या श्रीमद् भागवत की रचना की। तो किस उद्देश्य से, लोगों के दुख भरे जीवन में सच्चे दिव्य आनंद को लाने के लिए, सबके नास्तिक जीवन में भगवत हीन जीवन में भगवान को फिर से लाने के लिए श्रील वेद व्यास जो कि बड़े विद्वान हैं, बड़े महामुनि हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। फिर अगले श्लोक में सुखदेव सूत गोस्वामी कहते हैं, यस्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा, कि केवल इस श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण कथा है इसका श्रवण करने मात्र से क्या होगा, भक्तिर उत्पद्यते पुंसः, कृष्ण भक्ति का निर्माण हो जाएगा हृदय में, निर्मिति हो जाएगी, और साथ साथ में शोक मोह और भय ये दूर भाग जाएंगे, हमारे हृदय से बाहर निकल के चले जाएंगे, वनवास में चले जाएंगे। तो भक्ति करने का लाभ ये है। इस तरह से श्रील व्यास देव जी ने ये श्रीमद् भागवत की रचना की है। वैसे उनके बारे में बताया जाता है कि वही श्रीमद् भागवत के रचयिता है, ये श्रीमद् भागवत के दूसरे ही श्लोक में बताया जाता है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वर सदो हृदि सदा कृति युद्धते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत के दूसरे ही क्षण में श्लोक में बताया जाता है कि ये वेद व्यास जो है महामुनि है, उन्होंने ये श्रीमद् भागवत की रचना की है, और जब ये श्रीमद् भागवत है तो दूसरे किसी ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। किम वा परे ईश्वरो सद्यो हृदि अवरुद्धते त्रकृति भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। जिस ग्रंथ का श्रवण करने से जल्दी ही भगवान श्री कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यासदेव ने की। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र शिवदम तापत्रयोनमूलनम। इस श्रीमद् भागवत में भागवत धर्म का वर्णन है, भक्ति मार्ग का वर्णन है, जो कि शुद्ध भक्ति है। इसमें कोई भौतिकता नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। इस श्रीमद् भागवत में कोई चीटिंग बाजी के लिए जगह नहीं है कि भगवान के सामने जाकर आप बोलो, भगवान आप हमारा व्यवसाय बढ़ाइए, हम आपको इतना दान देंगे। भगवान को इस तरह से चीटिंग करना ये धर्म के लिए स्थान नहीं है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत की रचना व्यास देव जी ने की। तो ये व्यास देव जी की सबसे श्रेष्ठ रचना है श्रीमद् भागवत, जो कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शास्त्र हमारे लिए है, अमलम पुराणम। और इस भागवत के होते हुए और किसी भी शास्त्र के होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से श्री व्यास देव ने कई शास्त्रों का वर्णन किया है, साथ साथ महाभारत का भी। लेकिन महाभारत की लीलाओं में भी श्री व्यास देव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर व्यास देव नहीं होते तो आगे चल के महाभारत नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ही वास्तव में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पिता है, आपको मालूम है कि जब शांतनु राजा सत्यवती के पास आए, सत्यवती मतलब वही व्यास देव जी की माता, कैसे सत्यवती के पास आए वहां पर, उस गंध से आकर्षित होकर। ये सुगंध कहां से आ रहा है? क्योंकि पराशर मुनि का आशीर्वाद था ना सत्यवती के ऊपर कि उनके शरीर का गंध इतना सुंदर हो जाएगा कि मीलों मीलों तक वो फैल जाएगा। तो शांतनु राजा देख रही है गंध, इतना सुंदर गंध कहां से आ रहा है। अपने घोड़े पे घूमते घूमते आग देखा तो यहाँ एक सुंदर युवती है, तो इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने जाकर युवती के पिताजी से कहा कि मैं आपके कन्या से विवाह करना चाहता हूं, मैं विश्व सम्राट शांतनु हूं। शांतनु के पास ये आशीर्वाद था किसी ऋषि का, बहुत अद्भुत आशीर्वाद, कि जिसका भी स्पर्श वो करते वो बुढ़ापे से युवावस्था में आ सकता था। इसलिए उनका नाम बना शांतनु, जो कि लोगों को इंद्र तृप्ति के मार्ग में आगे सुविधा प्रदान कर सकते थे केवल उनका स्पर्श करने से, इसलिए शांतनु। लेकिन खुद की इंद्र तृप्ति के लिए देखिए कितने बेचैन हो गए, और उनकी इस कामना की वजह से कितना आगे चल के इतिहास बदल गया। नहीं तो भीष्म देव जो कि उनके पुत्र थे, जिनका नाम पहले देवव्रत था, वो राजा बनने वाले थे उनके बाद। लेकिन अब सत्यवती के पास आए तो सत्यवती के पिताजी ने कहा मैं एक शर्त पर मेरी पुत्री को तुम्हारे हवाले कर दूंगा कि इससे जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। तो उस समय शांतनु बहुत उदास हो गए, वापस चले गए। देवव्रत ने देखा कि मेरे पिताजी उदास हैं, क्या बात है। उन्होंने सारथी से पता किया और आके सत्यवती के पिताजी से कहा कि मैं ये व्रत लेता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, आपकी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन सत्यवती के पिताजी ने कहा कि ठीक है, आप व्रत लेते हो कि आप पुत्र नहीं बनोगे, लेकिन आपका पुत्र राजा बनेगा तो फिर क्या होगा। तो फिर भीष्म देव ने कहा तो ठीक है, मैं ये व्रत लेता हूं कि मैं अखंड ब्रह्मचारी का व्रत लेता हूं, मैं आइंदा मृत्यु तक मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। और क्षत्रिय के लिए ब्रह्मचारी का व्रत लेना ये बहुत मुश्किल है, खास करके उस जमाने में। तो जैसे ही उन्होंने व्रत लिया, देवताओं ने ऊपर से फूलों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। भीष्म 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 भीष्म, ये जयघोष हुआ। भीष्म मतलब जो भीषण व्रत धारण करता है, और उसके बाद उनका नाम हो गया भीष्म। और फिर सत्यवती का विवाह शांतनु राजा से हुआ, उनके दो पुत्र हुए जिनके नाम थे धृतराष्ट्र, बाद में आए विचित्र वीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद बड़े पुत्र थे और छोटे पुत्र थे विचित्र वीर्य। अब हुआ ये कि गंधर्व लोक से वहां के राजा थे जिनका नाम था चित्रांगद। अब उन्होंने इस पृथ्वी के चित्रांगद के शूर वीरता की बात सुनी थी, उन्होंने सोचा मेरे नाम वाला चित्रांगद और कैसे आ गए, एक ही चित्रांगद वीर होना चाहिए। वो भी आए पृथ्वी लोक पर, दोनों चित्रांगदों के बीच में युद्ध हुआ और पृथ्वी के चित्रांगद की हत्या हो गई, और इस समय केवल विचित्र वीर रह गए। अब आपको वो कथा मालूम है महाभारत की, कि भीष्म देव ने काशीराज के तीन कन्याओं को अपहरण करके लाए थे, अंबा, अंबिका और अंबालिका। लेकिन अंबा ने कहा कि मैंने मेरा हृदय तो शाल्व राजा को दे दिया है, तो भीष्म ने उनको भेज दिया वापस। उधर शाल्व राज ने अंबा को स्वीकार नहीं किया, अंबा भीष्म देव के पास आई, भीष्म ने कहा मैंने ब्रह्मचारी व्रत धारण किया, मैं नहीं शादी कर सकता। तो अम्बा ने तपस्या किया कि मैं भीष्म की हत्या करके रहूंगी। तपस्या किया, अगले जन्म में कौन बन गई, शिखंडी, और फिर भीष्म देव की मृत्यु का कारण बन गई। और बाकी रहे अंबिका अंबालिका। तो विचित्र वीर इन दोनों से इतने आसक्त थे और उन्होंने अपना ऐश में इतना समय बिता दिया, अंत में उनको टीबी हो गया, टीबी की बीमारी, जिस वजह से उनको वो मर गए। और अंबिका और अंबालिका दोनों विधवा हो गईं, लेकिन कोई संतान नहीं था। तो उस समय सत्यवती ने जाकर भीष्म देव से कहा कि अब आपको राजा बनना चाहिए। तो भीष्म ने कहा कि मैंने व्रत लिया था, मैं कैसे राजा बन सकता हूं, मैंने ब्रह्मचारी का भी व्रत धारण किया था, इसलिए मैं इनसे विवाह भी नहीं कर सकता। सत्यवती ने कहा कि तुमने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए यह व्रत धारण किया था, लेकिन मैं ही कहती हूं कि अब तुम कर सकते हो, मेरी अनुमति जब है तो अब कोई पाप नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। तो भीष्म ने कहा कि मुझे असत्य के मार्ग पर मत ले जाओ, जब मैंने व्रत लिया है तो उसका पालन मुझे अंतिम क्षण तक करना चाहिए, लेकिन एक मार्ग है, आपका पुत्र व्यासदेव, वो भी ब्राह्मण है, ऋषि है, और वो भी देवर है इनका, क्योंकि वो भी आपका पुत्र है, तो देवरेण सुतोत्पत्ति, देवर से मतलब पति के भाई से अगर पति की मृत्यु हो जाती और उसकी मृत्यु के पहले जन्म नहीं होता बच्चे का, तो पति के भाई से भी जन्म करवाना ये प्रथा पहले हुआ करती थी, इसको देवरेण सुतोत्पत्ति कहते हैं, देवर से सुत मतलब बच्चों की उत्पत्ति करना, लेकिन कलयुग में ये वर्जित है। तो ये भी धार्मिक है उस समय के लिए, तो भीष्म देव ने कहा कि इसमें अनेक फायदे हैं, ये धर्म के खिलाफ नहीं है। और दूसरी बात, व्यास देव जी जैसे महान ऋषि से पुत्र उत्पन्न हुए तो ये कितने अच्छे राजा बन सकते हैं। तो सत्यवती ने अपने मन में ही विचार किया, वैसे भीष्म देव को मालूम नहीं था कि व्यासदेव सत्यवती के पुत्र हैं, और सत्यवती शर्मा रही थी बताने के लिए, लेकिन आखिर उन्होंने बता दिया, और फिर भीष्म देव ने सुझाव दिया, और फिर सत्यवती देवी ने स्मरण किया व्यासदेव का, और तुरंत व्यासदेव आ गए, और वो वास्तव में हिमालय में तपस्या कर रहे थे। और जब उन्होंने उनको ध्यान में पता चला कि मेरी माँ मुझे याद कर रही है, तो उन्होंने वचन दिया था कि जब भी आप याद करोगे मैं आऊंगा, तो तुरंत वहां से यहां चले आए एक क्षण में। उन्होंने हिमालय में तपस्या करते समय काफी व्रतों को धारण किया था, और इन व्रतों के हिसाब से उन्होंने स्नान नहीं किया था, और शरीर के ऊपर बहुत सारी धूल गंदगी जमी हुई थी, शरीर से भी बदबू आ रही थी, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे, ये उनका व्रत था। तो ऐसे अवस्था में आए वो, और सत्यवती ने कहा उनसे कि आपके लिए कोई सेवा है, ये परिस्थिति हो गई है राज्य में, बड़ा संकट आ गया है, आगे राज्य में अगर राजकुमार नहीं होगा तो कौन राजा बनेगा, तो आप ही मेरी दो बहुओं से पुत्र की उत्पत्ति कीजिए। तो व्यासदेव ने कहा कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा ये है, लेकिन मेरी अवस्था तो आप देख रहे हैं, मैं तो ऐसी अवस्था में हूं कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, अब एक साल आप आपके बहुओं को व्रत पालन करने के लिए कहिए, एक साल बाद में फ्रेश होकर आऊंगा, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। लेकिन सत्यवती को चिंता थी कि कहीं उसके पहले और कुछ हो जाए, दो हृष्ट पुष्ट जो अच्छे युवक पुत्र थे उनके दोनों की मृत्यु हो गई, अब न जाने क्या हो सकता है, इसलिए पहले ही शीघ्र ही ऐसे करना चाहिए। तो व्यासदेव ने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है। तो सत्यवती ने दोनों अंबिका और अंबालिका को तैयार किया और उनसे कहा कि आपके देवर आने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा देवर मतलब भीष्म देव, उनको नहीं मालूम था कि उनके और एक देवर हैं व्यासदेव, और उनको कल्पना भी नहीं थी कि ये व्यासदेव इतने गंदे रूप में आएंगे यहां पर। और जब व्यासदेव अंबिका के कमरे में आए तो अंबिका को इतना धक्का पहुंचा, उसने अपेक्षा नहीं की थी कि आंख बंद कर दिए। और जब व्यासदेव बाहर आए तो फिर सत्यवती ने पूछा कि पुत्र होगा ना, तो व्यासदेव ने कहा अवश्य होगा, हजारों हजारों हाथियों के समान शक्तिशाली होगा, शूरवीर होगा, विद्वान होगा, परंतु क्या, अंधा होगा, क्योंकि जब मैं कमरे के अंदर आया तो आपकी बहू ने मुझे देखकर, मेरा क्रूर रूप देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। तो सत्यवती हैरान हो गई, अरे अभी राजा अंधा कैसे हो सकता है, क्या होगा। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की वेदव्यास से कि आप अंबालिका के पास जाइए। तो वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, लेकिन देखिए मेरी अवस्था ऐसे है, अब आगे और कुछ हो आप मुझे मत बताइए। तो इसके पहले अंबिका ने अंबालिका को पहले से बता दिया था कि देखो ऐसे ऐसे है, अभी आंखें बंद मत करना, लेकिन ये ऐसे ऐसे है, वेद व्यास जी आने वाले हैं आपके देवर। तो बड़े कठिनाई से अंबालिका ने अपनी आंखें खुली रखी, लेकिन वेद व्यास के क्रूर उस तपस्या के शरीर को देखकर इतनी घबरा गई कि उनका चेहरा बिल्कुल खून रक्त से हीन हो गया, बिल्कुल सफेद चेहरा हो गया उनका। तो फिर जब बाहर आए वेदव्यास, सत्यवती ने पूछा कि अब पुत्र ठीक होगा ना, अच्छा पुत्र होगा, शूरवीर होगा, सब कुछ, लेकिन क्योंकि आपके बहू के चेहरे से सारा रंग निकल गया मुझे देखकर, इसलिए आपका पुत्र पांडु होगा, पांडु रंग का, इसलिए फिर वो पांडु का जन्म हो गया आगे चल के। और अब सत्यवती देवी सोचने लगी कि अब क्या, तो फिर से अंबिका के पास भेजा। इस बार अंबिका ने कहा अब नहीं, तो उन्होंने अपने एक दासी मित्र सखी को वहां रख दिया। तो उस दासी ने बहुत अच्छी तरह से वेद व्यास जी का स्वागत किया, पैर छुए और इतनी अच्छी तरह से सेवा की कि जब वेद व्यास जी बाहर आए तो उन्होंने कहा कि आपने बहू ने मुझे धोखा दिया, मुझे सब मालूम था, लेकिन ये जो दासी है, जो कन्या है, हालांकि उसका जन्म इतना ऊंचा नहीं है, ये दासी है, फिर भी इतनी अच्छी तरह से इसने सेवा की कि इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो बड़ा बुद्धिमान होगा, बड़ा धर्मपरायण होगा। और फिर किनका जन्म हुआ? विदुर जी का। तो इस तरह से वेद व्यास जी के माध्यम से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये जन्म लिए। और वेद व्यास जी की भूमिका यहां पर खत्म नहीं होती, आगे चल के जब धृतराष्ट्र के माध्यम से गांधारी के गर्भ में बच्चे हुए, तो जब वो गर्भवती थी तो उस समय कुंती महारानी भी गर्भवती थी जो कि पांडु की पत्नी थी। हालांकि गांधारी जो है बड़ी पतिव्रता थी, बहुत भगवान की अच्छी भक्त थी, धर्मपरायण थी, सुशील थी हर दृष्टि से, लेकिन स्त्री का जो कभी कभी स्वभाव होता है वो उसके अंदर आ गया। उसने देखा कि मैं और कुंती दोनों गर्भवती हैं, लेकिन कुंती ने पहले जन्म दिया है एक पुत्र को मेरे से। युधिष्ठिर सबसे पहले जन्म लिए, सबसे वरिष्ठ पुत्र हुए वो युधिष्ठिर। और जब गांधारी को पता चला कि कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया है, उसको इतना गुस्सा आया कि अपने पेट को जोर से हाथ से मार दिया। वो गर्भवती थी और उनको वरदान मिला था शिवजी से, गांधारी को, कि उसको 100 पुत्र होंगे, लेकिन जब वो बच्चा बाहर आया तो एक टुकड़ा था। तो अब क्या किया जाए? तो फिर वहां वेद व्यास जी आए, क्योंकि गांधारी वेद व्यास जी की भक्त थी। तो वेद व्यास जी जब वहां आए तो उनके आदेश के अनुसार फिर इसके अलग अलग टुकड़े किए गए और उनको अलग अलग जगह रखा गया। आजकल के जो डॉक्टर हैं, जो खास करके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिनको आजकल ये सब क्लोनिंग वगैरह सब बहुत करते हैं, इनको इन चीजों के बारे में पढ़ना चाहिए, पुराना विज्ञान कैसे हुआ करता था। और फिर इससे 100 पुत्र उत्पन्न हो गए। इसका मतलब है कि वेद व्यास जी के बीच में आने से गंधारी के 100 पुत्र हो गए, वो जिनमें से सबसे बड़े थे दुर्योधन। कुल मिलाकर दुर्योधन और गंधारी के कितने बच्चे हुए? 101 बराबर 100 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। कन्या का नाम क्या था? दुःशला। दुःशला। और धृतराष्ट्र के दासी से और एक पुत्र हुए जिसका नाम था युयुत्सु। और युयुत्सु की विशेषता क्या है? युद्ध के समय जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, कौरव और पांडव, तो जब युधिष्ठिर महाराज जाकर घोषणा की कौरव सेना के सामने, आप में से अगर कोई भी हमारी तरफ आना चाहता हो, कौरवों का साइड छोड़कर हमारे पक्ष में आना चाहता हो, तो अभी भी समय है, आ जाइए। उस समय एक ही व्यक्ति आए और वो थे युयुत्सु। युयुत्सु पहले से पांडवों को प्रेम करता था, अन्य 100 कौरवों की तरह नहीं जो कि द्वेष करते थे पांडवों से। और दुर्योधन और अन्य कौरव हमेशा क्रोधित रहते थे युयुत्सु से, क्योंकि ये हमारा भाई जो है हमारे शत्रु पांडवों की ओर हमेशा बात करता है। और इस समय दुर्योधन ने देखा कि ये गद्दार है, ये हमारा भाई होकर अभी पांडवों की ओर जा रहा है, लेकिन युयुत्सु घबराए नहीं, चले गए। इस तरह से गांधारी के ऊपर जो शिवजी ने वरदान दिया था उसको पूर्ण कर दिया वेद व्यास जी ने। आगे चल के जब युद्ध समाप्त हो गया, गांधारी के सारे पुत्रों की हत्या हो गई, तो गांधारी को बहुत क्रोध आया। गांधारी ने भीमसेन और युधिष्ठिर को शाप देना चाहा, लेकिन उस समय वेदव्यास जी आए और उन्होंने उनको मना कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। और फिर वेदव्यास जी के योग शक्ति से उन्होंने गांधारी को दिखाया कि देखिए, आपके जो पुत्र हैं उनकी हत्या रणभूमि पर हुई और क्षत्रियों की गति उनको प्राप्त हुई है स्वर्ग में, तो वो देखिए, उनको दृश्य दिखाया। फिर गांधारी थोड़ा बहुत संतुष्ट हो गई और वेदव्यास जी की लीला पांडवों के साथ भी है। पांडवों के साथ वो संग देने के लिए हम कई बार गए वनवास में, जब पांडव लोग वहां रहा करते थे तो कई बार उनके साथ में गए, उनको उपदेश दिए, उनको संग दिया, और जब अंत में हस्तिनापुर का राज कर रहे थे महाराज युधिष्ठिर, सारे विश्व के सम्राट हो गए थे और राजसु यज्ञ भी संपन्न कर लिया था, तो उस समय जब अर्जुन द्वारका गए थे आखिरी बार भगवान श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए, तो उस समय श्री कृष्ण स्वधाम लौट के चले गए। अर्जुन बिल्कुल उदास होकर, दुखी होकर वापस आ रहे थे, भगवान कृष्ण के पटरानियों को साथ में लेकर आ रहे थे, लेकिन उस समय अचानक कई डाकुओं के आक्रमण से उन्होंने इन राड़ियों के ऊपर अपहरण कर लिया और अर्जुन हताश होकर लौट के चले आए। ये लीला को समझने के लिए और कोई दिन चर्चा करेंगे, लेकिन जब अर्जुन वापस चले आए उस समय युधिष्ठिर महाराज ने जान लिया कि अब कलयुग शुरू हो गया है। युधिष्ठिर महाराज ने सब जगह अशुभ लक्षण देखे और इसका वर्णन भी बड़े विस्तृत रूप में भागवत के प्रथम स्कंद में आता है। और उस समय श्री वेद व्यास ही थे जिन्होंने पांडवों को उपदेश किया कि अभी तुम लोग संन्यास ले लो, अब चले जाओ, वानप्रस्थ ले लो, संन्यास नहीं वानप्रस्थ ले लो। और द्रौपदी भी उनके साथ में आई, महाप्रस्थान किया पांच पांडवों ने और द्रौपदी ने। तो कुंती महारानी कहा रही, कहा किनके साथ? हाँ, जब विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर गए थे उस समय कुंती महारानी भी उनके साथ में गई थी। तो इस तरह से कुंती महारानी, गांधारी, धृतराष्ट्र वहां चले गए थे और विदुर अपने जगह यहां चले गए थे, तो इसलिए केवल पांच पांडव और द्रौपदी साथ में गई। धीरे 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 जैसे पांडव आगे चलते गए अंत में केवल युधिष्ठिर रह गए, वो कहानी आप सबको मालूम है। तो खैर, वेद व्यास जी की वजह से उन्होंने आखिरी निर्णय ले लिया। साथ साथ युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध के अंत में बहुत शोक कर रहे थे कि मेरी वजह से मुझे राजपद मिलना चाहिए, इसलिए ये युद्ध हुआ, तो मैं कितना नीच व्यक्ति हूं, मेरी वजह से कितने लाखों लाखों लोगों की हत्या हो गई है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला कोई बता सकते हैं? 18 दिन। और कितने लोगों की हत्या हुई? 64 करोड़। 64 करोड़ लोगों की हत्या हुई केवल 18 दिन में। तो स्वाभाविक है कि महाराज युधिष्ठिर जैसे वैष्णव का मन दुखी हो गया कि मेरे एक राजपद के को चढ़ने की वजह से इतने लोगों का खून बह गया, प्राण चला गया। बहुत लोगों ने उनको सांत्वना देने का प्रयास किया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए, वहां पर वेद व्यास जी भी आए, लेकिन कोई उनको शांत नहीं कर सका। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को शांत करने का श्रेय एक और भक्त को देना चाहते थे जिनका नाम था भीष्मदेव, जो कि वेदव्यास जी के भाई के समान ही थे। और आखिर में संजय को भी उन्होंने, संजय भी उनके शिष्य थे। संजय कौन थे? धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी थे, उनके सेवक थे। और भगवत गीता का जो उपदेश है वो संजय धृतराष्ट्र को दे रहे थे। हालांकि धृतराष्ट्र देख नहीं पाते थे, लेकिन जैसे आजकल खेलों के लिए रनिंग कमेंट्री चलती है ना, वैसे रनिंग कमेंट्री दे रहे थे संजय। और संजय बता रहे थे कि दोनों के बीच में, कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में क्या बातचीत चल रही है। और अंत में 18वें अध्याय में भगवद गीता के अंत में संजय कहते हैं, व्यास प्रसादा श्रुतवान एतद् गुह्यम अहम परम। मेरे गुरु महाराज व्यास देव की कृपा से मैं इस परम गुह्य वार्तालाप को सुन पाया और आपको सुना पाया। इसका मतलब है कि व्यास देव या उनके परंपरा में आने वाले गुरुओं के, वैष्णवों की कृपा से हम भी श्री कृष्ण को देख सकेंगे और उनके और उनके भक्तों के बीच में जो संवाद है भगवद गीता, उसको सुन पाएंगे, जान पाएंगे और अपने जीवन में अमल कर पाएंगे। वही व्यास देव अब कहां हैं? किसी को पता है? वो अभी भी हैं, अभी भी अपने सिद्ध योग शरीर में अभी भी हैं, इतने हजारों साल बाद भी। और ये आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसे भी वर्णन अन्य लोगों के बारे में आता है श्रीमद् भागवत में। भागवत में आता है ये दो वंश क्षत्रियों के, कौन से दो क्षत्रिय वंश हैं? चंद्र वंश जिसको सोम वंश भी कहते हैं और दूसरा है सूर्य वंश। ये दोनों वंश हैं क्षत्रियों के, लेकिन कलयुग के पहले या कलयुग की शुरुआत होते होते ही ये दोनों वंश नष्ट हो गए, अब कोई प्रामाणिक क्षत्रिय वंश प्राय रहे नहीं। तो भागवत में वर्णन आता है कि महाराज शांतनु के एक भाई थे, महाराज शांतनु वही महाराज शांतनु जो भीष्म देव के पिता थे, जिनके बड़े भाई का नाम था देवापी। वैसे राज तो देवापी को जाना चाहिए था, लेकिन देवापी को राज कारोबार में दिलचस्पी नहीं थी, वो वनवास वन में चले गए थे तपस्या करने के लिए, और उन्होंने आगे चलकर योग अभ्यास करके सिद्ध योग प्राप्त कर लिया, ऐसा सिद्ध देह प्राप्त कर लिया। और कहा गया है कि उस समय से मतलब द्वापर के अंत से अभी तक वो जीवित हैं, कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, और वो एक कलाप ग्राम नाम के गांव में निवास कर रहे हैं, और कलयुग के बाद जब अगला सत्ययुग आएगा तो वो विवाह करके एक पुत्र की उत्पत्ति करके इस सोम वंश या चंद्र वंश को फिर से चालू रखेंगे। मतलब ये दोनों वंश कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह से सूर्य वंश के बारे में भी बताया गया है कि प्रभु रामचंद्र जी के पुत्र कुश, उनमें उनके आने वाले वंश में कई 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 पीढ़ियों बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम था मर, और वो भी आगे चल के उस टाइम से त्रेता युग के टाइम से वो जीवित हैं उसी गांव में कलाप ग्राम में, और ये आगे चल के विवाह करेंगे कलयुग के अंत में और पुत्र की उत्पत्ति करेंगे और इस तरह से सूर्य वंश को आगे फिर से जारी करेंगे। इस तरह से अगले सत्ययुग के आते समय चंद्रवंश और सूर्यवंश दोनों रहेंगे। इसका मतलब है कि ये मरु और देवापी ये अभी तक कलाप ग्राम में अभी तक हैं। ठीक उसी तरह से फिर आश्चर्य की बात नहीं है कि जब ऐसे जीवात्माएं अपने योग सिद्धि के बल पर अभी तक जीवित रह सकते हैं लाखों साल, तो वेद व्यास जैसे अवतार अगर रह सकते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आजकल थोड़े बहुत लोग अपने आप को बाबा या अवतार मानते हैं, थोड़ा कुछ योग सिद्धि दिखाकर, कुछ विभूति, कुछ सोना चांदी उत्पन्न करके, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि अगर वास्तव में योग सिद्धि दिखानी है तो इनके जैसे, इन महान व्यक्तियों के जैसे लाखों साल जीने दो, उनको शरीर को बनाए रखने दो, ये असली योग सिद्धि है। और वेद व्यास के साथ साथ अश्वत्थामा जैसे लोग भी हैं, परशुराम जैसे भी हैं। आप जानते हैं कि ये सातवां मन्वंतर है जैसे हमने चर्चा की वैवस्वत मनु की, और जब आठवां मन्वंतर आएगा तो उस समय जो मनु होंगे उनका नाम होगा सावर्णी। और हर मन्वंतर में आप जानते हैं कि सप्तऋषि बदलते हैं, इंद्र बदलते हैं, तो अगले मन्वंतर में इंद्र कौन बनेंगे, इंद्र का पद कौन स्वीकार करेगा? बलि महाराज, जो पहले मन्वंतर में असुरों के राजा थे, आगे वाले मन्वंतर में देवताओं के राजा बन जाएंगे। क्योंकि बलि महाराज असुर कुल में पैदा होने के बाद भी वो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत और शुद्ध भक्त हैं, अभी भी वो निवास करते हैं सुतल लोक में, राह देख रहे हैं मन्वंतर के अंत की, जबकि वो आगे इंद्र बन जाएंगे। और उसी तरह से जो सप्तऋषि होंगे उनमें से परशुराम भी एक रहेंगे, अश्वत्थामा भी रहेंगे, और साथ साथ वेद व्यास भी रहेंगे। तो व्यास देव जो हैं अभी भी कहीं अपने आश्रम में कहीं निवास कर रहे हैं अपने सिद्ध देह में, क्योंकि वो उनके पास भी योग सिद्धि है, और आगे चल के वो इस मन्वंतर के को अंत होने की राह देख रहे हैं। अभी केवल 28 चतुर्युग समाप्त हो चुके हैं, 70 होने हैं, मतलब और कितने 40 के बराबर और बाकी हैं। तो 40 से ज्यादा चतुर्युग व्यास देव जी उसी शरीर में निवास करेंगे, कहीं हमारे स्थूल आंखों के लिए वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन जब सही समय आएगा तो फिर वो अगले मन्वंतर में 70 ऋषियों में से एक हो जाएंगे। इस तरह से व्यास देव जी कृष्ण द्वैपायन व्यास, आज उनका जन्मदिवस हमें मानना चाहिए गुरु पूर्णिमा या उनका स्मरण दिवस, क्योंकि वो आदि गुरु हैं, और गुरु के बिना तो हम प्रगति नहीं कर सकते आध्यात्मिक जीवन में या किसी भी पथ में। तो हमें कृष्ण द्वैपायन व्यास, जो कि भगवान के अवतार भी हैं साथ साथ, आज के दिन उनके चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमारे हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति थोड़ी बहुत भक्ति जागृत हो जाए, और हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाए। श्रील व्यास देव की जय।
प्रभु जी, आपने बताया कि व्यास देव जी ने जो भागवतम का मतलब भागवतम लिखी तो वो कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए लिखी और कृष्ण भावना के लिए लिखी, तो जो दूसरे उन्होंने पुराण लिखे या वेद लिखे या दूसरे जो स्कंद पुराण लिखे, तो वो उसका ध्येय क्या था उनका लिखने का?
अच्छा प्रश्न है। उनका उद्देश्य भी था कि लोगों का उद्धार करना, परंतु उन्होंने सोचा था कि मैं लोगों को धीरे 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 से उद्धार कराऊंगा, वैदिक यज्ञ इत्यादि ऐसे पथों से। अलग अलग प्रवृत्ति के लोगों के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के शास्त्रों की निर्मित की थी। जैसे जो ज्ञानी टाइप के लोग हैं उनके लिए उपनिषद बनाए, वेदांत सूत्र बनाए, उनके लिए जो कर्म जो भोग करना चाहते हैं संसार में उनके लिए कर्म कांड के शास्त्र बनाए। हालांकि कृष्ण भगवान का उल्लेख इन शास्त्रों में भी जगह जगह आता है, परंतु भगवान कृष्ण को उन्होंने मूल भूमिका नहीं बनाई। जैसे महाभारत में भी अगर कोई व्यक्ति संप्रदाय के बाहर से महाभारत को पढ़ता है तो वो श्री कृष्ण को समझ नहीं पाएगा, सोचेगा कि श्री कृष्ण महाभारत में एक और भूमिका है, एक और व्यक्ति है, बस इतने सारे शक्तिशाली व्यक्ति हैं महाभारत में, उनमें से कृष्ण और एक है। तो कृष्ण परम सत्य है और कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, कृष्ण कथा सुनना चाहिए, कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए, इस पे इतना जोर इनमें नहीं दिया था। और इसी बात को नारद मुनि ने कहा वेदव्यास जी के कि आपने इतने अच्छे अच्छे ग्रंथों का निर्माण किया की रचना की है, लेकिन कृष्ण कथा के ऊपर आपने इतना जोर नहीं दिया, ये आपकी भूल हो गई। इसलिए इस भूल को सुधारने के लिए उन्होंने जो सारे शास्त्रों का सार है उसको उन्होंने श्रीमद् भागवत के रूप में प्रस्तुत किया। सारम सारम समुद्रताम, यह है श्रीमद् भागवत। इसलिए हमें केवल भगवद गीता और श्रीमद् भागवत अगर हो बस हमारा जीवन सफल हो सकता है। कि कृष्ण लीला में हमने सुना है कि ब्रह्मा जी जिनके हजारों लाखों लाखों सर हैं अलग अलग ब्रह्मांडों से आए, और हमारे ब्रह्मा के पास केवल चार सर हैं और इसलिए चार वेद हमारे ब्रह्मांड में है, तो अनेक अन्य ब्रह्मांडों में कितने वेद हैं? वेद तो एक ही है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से उनका विभाजन किया जाता है कितने भी भागों में। जैसे ब्रह्मा जी ने इनका विभाजन किया चार भागों में और अपने शिष्यों को प्रदान कर दिए, लेकिन आगे चलकर पैल ऋषि, जैमिनी ऋषि, वैशंपायन ऋषि इत्यादि, सुमंतु ऋषि, इन्होंने आगे चल के और विभाजन किए और उनके